जी बिस्मिल्लाह करें। जी जनाबे अली, हेलो जी, जी यही तो
मेरा सवाल
जी।
मेरा सवाल सर मौसू कबल अंदा मौसू
जी,
तो सर ये कैसे हासिल किया जा सकता है, पढ़ने से पहले कैसे मारा जा सकता है?
लोग तो ये समझते हैं कि जहर की फक्की खा लो। नहीं, असल में बात बड़ी सिंपल है जी, बात बड़ी सिंपल है। देखिए, मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ, आपके इल्म में है, हवास की रफ्तारें हैं। क्या हैं? हवास की रफ्तारें हैं। एक रफ्तार क्या है जिसे आप बेदारी कहते हैं, एक रफ्तार है जिसे हम नींद कहते हैं, ठीक हो क्या?
जी सर।
अब एक रफ्तार वो है जो हमारे मरने के बाद सवार होती है या तारी होती है, यानी हवास की रफ्तारों का खेल है। हवास की एक रफ्तार है जिसे हम बेदारी कहते हैं, ठीक है, ये एक रफ्तार है। जब ये 70 गुना हो जाती है तो ये रात के हवास कहलाते हैं, नींद के हवास कहलाते हैं, ख्वाब के हवास कहलाते हैं। जब ये 70,000 गुना हो जाती है यही हवास की रफ्तार, तो लैलतुल कद्र कहलाती है।
जी सर।
अब लैलतुल कद्र के बाद जब ये हवास की रफ्तार, मतलब हवास की रफ्तार को बढ़ाते चले जाएं, तो ये मौत के हवास की रफ्तार बन जाती है, यानी हवास की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि बॉडी परमानेंटली डिस्कार्ड कर दी जाती है। अब हजूर अलैहिस्सलाम का ये इरशाद जो है, मौतु कबले अंतुम तमूतो, मर जाओ इससे पेशतर कि तुम्हें मौत आ जाए, यानी कि जिंदगी में रहते हुए, क्या कहा, इसी जिंदगी में रहते हुए आपने हवास की रफ्तारों से आशना होना है। हवास की रफ्तारों से आशना नहीं होना, बल्कि उनको इस्तेमाल करने का हुनर और ढंग सीखना है। मौत के हवास की रफ्तारों को अचीव करना, यानी कि आपको टारगेट दिया जा रहा है। टारगेट ये है कि भाई जैसे आप कहते हैं मैंने पहलवानी सीखनी है, तो हम कहते हैं जी आपको ओलंपिक्स जीतना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जाहिर है कि मुल्की सतह पे खेलना पड़ेगा। मुल्की सतह पे खेलने से पहले आपको शहर की सतह पे खेलना पड़ेगा, इलाकाई टीम में दाखिल होके। तो अब जरा गौर करें कि ये हवास की रफ्तारों को बढ़ाना है। हवास की रफ्तार अगर बढ़ गई, हाँ जी, हवास की रफ्तारों से आशना होंगे तो बढ़ाएंगे ना। جی ہاں اس کی مشق ہونی ضروری ہے. جی ہاں دیکھے نا یہ سانس پورا لینا, پانی آہستہ پینا, کھانا چبا کے کھانا, یہ باڈی کو سیٹ کر دیتا ہے. باڈی سیٹ ہوتی ہے تو بھیجا سیٹ ہوتا ہے, یعنی مغز جو جسم میں گرے میٹر ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. پھر ذہن جو ہے وہ کام کرے گا, تو ذہن کی ورکنگ جو ہے وہ مراقبوں سے ٹھیک ہوگی, ٹھیک ہے, غور و فکر سے ٹھیک ہوگی. غور و فکر کرنے کے بعد جب آپ ذہن کو شانت کر لیں گے, دیکھیں فارمولا بڑا سمپل ہے, جب جسم ساکت ہو جاتا ہے, شانت ہو جاتا ہے, تو ذہن کام کرتا ہے. جب ہم ذہن کو شانت کر لیتے ہیں, یہ بالکل سکون پہ ہو جاتا ہے, یا تو ہم نفس مطمئنہ, یہ نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل ہوگا تو کیا ہوگا, ارجی الى رب کا, اب آپ اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں گے, اور وہ بھی کس طرح, الراضیہ المرضیہ, کہ آپ اس سے راضی ہوں گے. سب سے بڑا پنگا کیا ہے کہ انسان اللہ سے راضی نہیں ہے, تو جب آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ روحانی پرواز کرنا چاہتے ہیں, نہ دماغ کام کر رہا ہے نہ جسم میں سکت ہے, تو کیا ہوگا, آپ اڑ سکیں گے نہیں. پہلے اس کو جسم کو سنبھالیں گے. دیکھیں تینوں درجوں کو سنبھالنا ہے, روح اعظم کے درجے پہ پہنچنے کے لیے آپ کو روح انسانی کا اور اس سے نیچے روح حیوانی کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیں نا قدم قدم پہ قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, کہ مجھے دنیا کی حسنت, حسنت کا مطلب ہے کہ خوبصورتی, پرفیکشن, توازن, اعتدال. دنیا میں بھی آپ کو سارے کام توازن اور اعتدال سے کرنے ہیں, تاکہ آپ کی آخرت بھی متوازن ہو سکے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بات دیکھیں نا, کتنے جامع الکلام ہستی ہیں وہ, کہ انہوں نے پانچ لفظوں میں, موتو قبل انتم تموتو, چار لفظوں میں, چار لفظوں میں انہوں نے پوری زندگی کا لایا عمل دے دیا. تو بات واضح ہو گئی؟ جی ہاں دیکھے نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے حضرت علی کا وہ واقعہ سنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا, جب تیر لگا تو وہ نہیں نکل رہا تھا, جسم میں اس طرح پیوست ہو گیا کہ انہوں نے کہا جب میں صلات قائم کروں تب نکال دینا. یعنی جب وہ اللہ سے تعلق قائم کرتے تھے تو ان کا تعلق قائم کا قیام اس درجے کا ہوتا تھا کہ ان کے حواس کی رفتاریں اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جسم نگیٹ ہو جاتا تھا, جسم نگیٹ ہو جاتا تھا, ختم نہیں ہو جاتا تھا. اس کی مثال دیکھیں, آج کل آپ کیا کرتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, مریض کو انیستھیزیا دیتے ہیں. انیستھیزیا کیا کرتا ہے, انیستھیزیا آپ کے نروز میں ایسی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اطلاعات کو دماغ تک نہیں جانے دیتے. اطلاعات کا, باڈی کا اطلاع, دیکھیں نا آپ کے جسم میں کہیں سوئی چوبے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے, लेकिन जब आप एनेस्थीसिया में होते हैं तो वो पूरा पूरा निस्तर चलता है, लेकिन आपके जहन को, दिमाग को चूंकि तलात नहीं मिल रही होती, लिहाजा उसको पता ही नहीं चलता कि काटा पीटी हो रही है। यानी के आप ये कहिए कि वो इरादतन अपनी ताकत, अपनी कुव्वत इरादी, अपने इख्तियार से ये निजाम सस्पेंड करने का नाम मौत है। देखे ना, हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखना गैर शऊरी, गैर इख्तियारी और गैर इरादी अमल है, हाँ या नहीं? अगर आप ख्वाब के हवास को इरादी, इख्तियारी और शऊरी अमल बना लेंगे तो रफ्ता रफ्ता आपकी सकत इतनी बढ़ जाएगी कि आप मौत के हवास में भी अपने शऊर को कायम रख सकेंगे। आप इरादी तौर पर जब मौत के हवास तारी करेंगे तो जिस्म सस्पेंड हो जाएगा ना, ये मतलब है। वेलकम है जी। नहीं, गैब और जाहिर तो एक पूरा निजाम है ना जी। यहाँ हर चीज गैब से आ रही है, अपना मुजाहिरा कर रही है और वापस गैब में जा रही है। हजूर कलंदर बाब औलिया ने फवारे की मिसाल दी है। क्या होता है? पानी का प्रेशर। पानी में आप एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो पानी तालाब में से उछल के ऊपर उछलता है। उसके पीछे कुव्वत काम कर रही है, वो फोर्स जो है बिदाइयत कहलाती है। बिदाइयत की ताकत की वजह से वो ऊपर उछलता है, एक बुलंदी तक पहुंचता है और वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ वापस जा रहे हैं। ये है कि हम गैब से आए, जाहिर हुए और फिर गैब में चले गए, ये अजल से हो रहा है, हर चीज में हो रहा है। देखे ना, ये जुमला जो आपने फरमाया ये 2 मिनट पहले कहाँ था? गैब में। जब आपने उसको बोला, आपने उसका तकल्लम किया, आपने उसे कलाम की शक्ल दी, आपने उसको बात की शक्ल दी, मुंह से अदा किया, वो नुत्क बना। अब क्या हुआ, जब हमारी वो समातों से टकराया तो वो क्या हुआ, गैब से एक जुमला आया, वो जाहिर हुआ और फिर गैब में चला गया। हर लम्हा यही हो रहा है, हाँ या नहीं? अब ये जो घड़ी की सुई को आप देखें, टिक टिक टिक, क्या हो रहा है? ये जो प्रेजेंट सेकंड है, ये अभी 1 सेकंड पहले ये गैब था, अब ये हाजिर हो गया और अगले सेकंड में ये फिर गैब हो गया। क्यों जी? मतलब है, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो 1 सेकंड पहले वो गैब होता है, 2 सेकंड में वो जाहिर होता है और 3 सेकंड में वो फिर गैब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह पूरा दिन, मतलब कल, आज का दिन जो था ये गुज़िश्ता कल गैब में था, आज ये जाहिर हुआ, शाम तक ये गायब हो जाएगा, अगला दिन फिर जाहिर हो जाएगा, उससे अगले दिन, इसी तरह साल लगा लें, 1 साल जाहिर हुआ फिर वो गायब हो गया। असल में तो वो 1 सेकंड है जो बार बार गायब और जाहिर, गायब और जाहिर, गायब से जाहिर हो रहा है फिर गायब में जा रहा है, 2 सेकंड اچھل رہا ہے، پھر وہ ظاہر ہو رہا ہے، غیب میں جا رہا ہے، تو یہ بات موضوع دوسرا تھا. اب واضح ہو گئی بات؟ ویلکم. جی جناب علی، جی وعلیکم السلام. اصل میں حواس کی رفتاروں کی انڈیکیشن ہے نا، لیلۃ القدر حواس کی رفتاروں کو مان لیں، یعنی قرآن کی تفہیم کے لیے آپ کو لیلۃ القدر کے حواس سے آراستہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں قرآن کیا ہے؟ قرآن وحی ہے، یہ کوئی شعوری اور عقلی نظام نہیں ہے. وحی کا مطلب ہے اعلیٰ درجہ اطلاعات کی وصولی کا انتہائی اعلیٰ درجہ، جس میں کوئی آمیزش کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایسا پرفیکٹ نظام ہے. قرآن کی تفہیم کے لیے ہمیں یہی نظام سے آراستہ ہونا ہے، یعنی اپنے ذہن کو اس درجے پہ لے جانا ہے جہاں اطلاعات پوری طرح اور خالصتاً ہمارے ذہن میں موصول ہوں. وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنا برتن صاف رکھیں اور دستیاب رکھیں. کیا کہا میں نے؟ برتن کو صاف رکھنا ہے اور دستیاب رکھنا ہے. اب یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ ہم نے انزلنا فی لیلۃ القدر، اصل میں کس کو نازل کیا؟ وہاں لفظ قرآن تو ہے ہی نہیں ہے. انا انزلنا ہو، ہاں یا نہیں؟ اب دیکھیں نا، اس کو نازل کیا کس کو؟ وہ آگے بتایا کہ یہ حواس کی وہ رفتار ہے جس میں ملائکہ اور روح کا تنزل دکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو فرمایا کہ قرآن کے نزول، قرآن کا نزول ٹھیک ہے، لیلۃ القدر کے حواس میں ہوا، یعنی کہ حواس کی بڑھی ہوئی رفتار چاہیے اس کے ریسیونگ کے لیے، ورنہ تو آپ پر میں صرف تلاوت کر رہے ہیں، ہم اس کی تجوید کر رہے ہیں، ہاں یا نہیں؟ مطلب ہے بڑی اچھی لہن میں قرأت سن کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن بات جو کہی جا رہی ہے کیا وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ بات سمجھنے کے لیے قرآن نے جو طریقہ بتایا، جو آداب بتائے کہ بھی آپ اپنے حواس کی رفتار کو بڑھائیں گے تو بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فوکس کرنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ توجہ دینی ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 23 سال میں نازل ہوا، वो चूंकि शऊर इंसानी एक चीज को रफ्तार रफ्तार और तरतीब से वसूल करता है, ठीक है, वो कुरान जब जाहिरी सूरत में, किताबी सूरत में या मकतूबी सूरत में या तरतीब नजूली की सूरत में जिस तरह से वो सामने लाया गया, वो इंसानी शऊर की वजह से है, वरना वो एक सेकंड में आ गई बात, जो आगे मजहर बनते बनते 23.5 साल लगे उसको, तो इससे अंदाजा कर लें कि एक सेकंड का 23.5 साल से क्या क्या तनासब है। यानी रफ्तार का, यानी इतनी रफ्तार से चीज आई लेकिन शऊर इंसानी के लिए उसको कट डाउन करके, स्लो डाउन करके, कट डाउन नहीं, स्लो डाउन करके उसको, शऊर को उससे सजाया गया, शऊर में उसे उतारा गया। तो बात वाजे हो गई।
एक सवाल और है,
फार्मूले ही तो बताएं कि देखे ना, गाय घास चरती है और उससे खून बनता है उसका, उससे उसका गोश्त बनता है, उसकी चर्बी बनती है, उसके बाद उसी गोबर और गोश्त के उस जिस्म में एक चीज बनती है जिसको दूध कहते हैं। अब वो दूध गाय के अपने बच्चों के लिए होता है लेकिन इंसानों के लिए भी है, इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आप ये देखें कि उस दूध के अंदर चर्बी की मकदार या मक्खन जिसे आप कहते हैं, फिर घी बनता है, पनीर बनता है, ये सारी चीजें, दही बनता है, ये सारी चीजें कहाँ हैं? उसी दूध में। तो अल्लाह ने मतवजो किया। अब आप भी तो वही घास खा रहे हैं, वो आप तो वो गाय भी खा जाते हैं, और करें ना। अब इंसान के यहाँ भी माएं जो है बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो उनके खून की बदली हुई शक्ल है। अब बताया कि देखे ना, जहाँ गाय के थन है वहीं पे उसके गोबर का निजाम भी करीब ही है। अंदर पेट में मेदे के बाद उसका मतलब है एक्सक्रीशन पैसेज, और साथ में देखें कि नीचे अडर यानी वो जो थन है जिनमें दूध उतर रहा है, तो दूध कहाँ बन रहा है भाई, कहाँ से बन रहा है? ये खून की बदली हुई शक्लें, खून से ही बन रहा है ना। अब हमने और आपने सिर्फ इसकी तिलावत फरमाई, ये नहीं गौर किया कि भाई अल्लाह रब्बे करीम हमें किस तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। भाई अल्लाह रब्बे करीम अपनी कारीगरी की तरफ मतवज्जो कर रहे हैं, अपने तख्लीकी निजाम की तरफ मतवज्जो कर रहे हैं ना। अब गोबर देखे ना, आपको उसकी बदबू देखें, आप गोबर खा सकते हैं? हालां पता है कि ही तो सिर्फ घास है, लेकिन गोबर गोबर है, उसी गोबर घास से एक तरफ गोबर बन रहा है, एक तरफ खून बन रहा है, एक तरफ चर्बी बन रही है, एक तरफ गोश्त बन रहा है, एक तरफ दूध बन रहा है। तो आपको ये जुमला सुन के हैरत नहीं हो रही कि कैसी अजीब मशीन अल्लाह ने बनाई? और जहां हैरत है, अल्लाह का लफ्जी मतलब है मुतहय्यर कर देने वाला, हैरान कर देने वाला। अब आप देखें ना, बाकी इसी तरह अब आप पौधों में देखें तो, अब बादाम में से रोगन निकलता है कि नहीं, जैतून में से रोगन निकलता है कि नहीं, भाई नारियल में से तेल निकलता है या नहीं, अब इसी तरह सरसों क्या है, एक पौधा है, उसके बीज में से तेल निकलता है, हाँ या नहीं? और इसी तरह सैकड़ों चीजें हैं जिनका तेल निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बे करीम के निजाम में कुदरत पे तफक्कुर करें तो इस तरह की बातें अल्लाह तबारक व तआला आपकी तवज्जो दिला रहे हैं कि तुम मेरी कारीगरी को तो समझो। अब मक्खी जो है, शहद की मक्खी, उस कहा उसके बारे में कि भी हमने उस पर वही की। अब आप गौर करें कि हमने आपने समझा होगा कुछ नहीं, आप जरा सा तफक्कुर करें कि शहद की मक्खी छत्ता बनाती है, ठीक है, वो छत्ते की साख्त देखें, एक मक्खी एक सिरे पे बना रही है, दूसरी दूसरे सिरे पे बना रही है, सारे घरों की छत्ते के सारे खानों की शक्ल एक जैसी है। और फिर उसके बाद देखें कि हर मक्खी मोम भी बना रही है, शहद भी बना रही है, हैं? फूलों का रस चूसती है और उसी से शहद भी बन रहा है, उसी से मोम भी बन रहा है। अच्छा, उसी मोम को वो घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, घर बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, छत्ते के खाने में शहद भरते हैं फिर उसे मोम से बंद कर देते हैं। देखे ना, छत्ते में से शहद खुद ब खुद तो नहीं गिरता, बाहर तो नहीं टपकता, जब तक आप उसे काटे नहीं। क्या मतलब है इस कारीगरी के, क्या कहेंगे आप? अकल मुतहैयर होगी ना, अकल का तहैयर जो है वो आपको अल्लाह की तरफ मतवजो कर रहा है या नहीं कर रहा कि भाई वो जात जिसने मक्खी जैसी चीज को इतनी बड़ी साइंस सिखा दी, अल्लाह ने वो राज बता दिया कि भाई उसको मैं बराए रास्त इतला देता हूँ, वो आपकी तरह मेरी इतलात में आमेजश नहीं करती, ये मतलब है इसका। ठीक हो गया ना? इरशाद जी हाँ, देखे ना, तस्वीर का मतलब है तसव्वुर, ठीक है, तस्वीर के लफ्ज से ही है ना, तोए स्वाद वाव रे, इसमें ये लगा दें तो तस्वीर बन गई। क्या मतलब हुआ कि इसका मादा एक ही है, तसव्वुर तस्वीर, ये जो लफ्ज हैं इनका मतलब है कि जब कोई चीज हमारे नजर के बाहर सामने खारिज में नजर आती है तो हम उसको तस्वीर कहते हैं, जब वो जहन की सतह पे होती है तो वो तसव्वुर है। यानी किसी चीज की डायमेंशंस का वाज़े हो जाना जहन में तस्वीर है, ठीक है ना। जब आपको एक ख्याल आया, ख्याल में डायमेंशंस पैदा हुई, उसमें जब रंग आमेजी हो गई तो आपके जहन में पूरे चीज की तस्वीर आ गई। अब मसलन मैं एक लफ्ज बोलता हूँ लीमू, क्या हुआ, मैंने लफ्ज बोला लीमू, लीमू एक तला है, आपके जहन में लाम ये मीम वाव नून गुना तो नहीं आया, लीमू की शक्ल आई, यानी लीमू का ख्याल तसव्वुर में ढला, तसव्वुर में गहराई पैदा हुई तो उसके खदो खाल वाजे हो गए। ठीक हो गया? यानी आपके सवाल का जवाब तो था जी हाँ, ये फालतू की बात मैंने वैसे ही कह दी। प्रैक्टिस मश्क, देखे ना, जब आप को कहा के मुराकबा करें, आपको कहा या हय्यो या कय्यूम पढ़ें, अब देखें हम या हय्यो या कय्यूम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा जहन उसकी तरफ मतवज्जो नहीं है। जब आपका जहन उसकी तरफ मतवज्जो के या हय्यो या कय्यूम पढ़ेगा तो आपको जिंदगी यानी हयात और उसके कयाम की बातें समझ में आएंगी, کہ حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے. جب آپ کے ذہن میں زندگی کی تصویریں چلیں گی تو کیا ہو گیا، تصویریں چلیں کہ نہیں، بات زیادہ سمجھ ہی تب آتی جب تصویریں سامنے ہوں، ہاں یا نہیں. بس یہ خبریں.
ہمارے لیپٹاپ میں بہت سی چیزیں پڑتی ہیں، دراصل وہ باہر سے آتی ہیں. انسان کے علاوہ کائنات میں اور جتنے بھی لیپٹاپ ہیں، جتنا تذکرہ کیا گیا ہے فائل سے اور کتاب سے، انسان کا
دیکھیے بڑا سمپل ہے. لا متناہی، متناہی کے لفظ پہ غور کریں. متناہی جس کی انتہا ہو، جس کی حدیں ہوں، ٹھیک ہے. اب وہ تفکر جس کی کوئی حدیں نہیں ہیں وہ لامتنا ہی تفکر ہے. جب اس کے اندر حد بندی ہوئی کیا ہوا، وہ فرشتے کا تفکر بن گیا، وہ جنات کا تفکر بن گیا، وہ انسان کا تفکر بن گیا. اب آپ مثال لیں، مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس پہ پانی ڈال دیا آپ نے، اب وہ گارا بن گیا. اب آپ اس میں سے بچوں کو بٹھا دیں کہ وہ چیزیں بنائیں تو کیا کریں گے، وہ تھوڑی سی مٹی لیں گے، اسے ہاتھ میں کر کے وہ کوئی گھوڑا بنا دے گا، کوئی کتا بنا دے گا، کوئی اس کا گیند بنا دے گا، کوئی پیالہ بنا دے گا، ہاں یا نہیں. اب مٹی جب ڈھیر کی شکل میں تھی تو اس کی کوئی حدیں نہیں تھی. اب وہ جو بچے نے مٹھی بھر کے اس میں سے مٹی لی، اب اس کی حدود ہے، تو وہ متناہی ہو گیا، اس کی انتہا ہو گئی نا. متناہی یعنی انتہاؤں میں قید ہے وہ. اب آپ نے اس کو جو شکل دینا چاہی وہ آپ کے ارادے نے دی، آپ نے اس کا گولک بنا دیا، آپ نے اس کا ڈھول بنا دیا، آپ نے اس کو مطلب ہے بیل بنا دیا، آپ نے اس کا گیند بنا دیا، جو بھی چاہا آپ نے اس کو وہ شکل دے دی جو بھی آپ کو بنانی آتی ہے، ہاں یا نہیں. اب اگر میں کہوں کہ آپ مٹی کے بجائے ذرا روشنی پہ غور کریں، اسی طرح روشنی ہے، روشنی لا متنا ہی چیز ہے، لیکن جب اس میں حدیں پیدا ہو گئیں تو وہ چیزیں بن گئیں. اسی طرح خیال یعنی روشنی سے اوپر کی سطح ہے، وہ بھی ایک لا متنا ہی چیز ہے، لیکن جب آپ کا ذہن اسے وصول کرتا ہے تو اس میں حدیں پیدا ہو گئیں، تو وہ لا متنا ہی سے متنا ہی ہو گیا. اب اسی طرح ایک مخلوق کا جس کا نام فرشتہ ہے، وہ ایک علیحدہ شکل و صورت رکھتی ہے، اس کا علیحدہ کمپوزیشن ہے. جنات ایک الگ کمپوزیشن ہے، انسان ایک الگ کمپوزیشن ہے، لیکن مین چیز جو ہے وہ کیا ہے، کامن، کہ سارے نور کی تخلیق ہے. آگے نور کے درجے ہیں نا، ایک نور کی تخلیق کا نام فرشتہ ہے، یہ نور مفرد ہے. جب وہ نور مرکب ہو گیا تو وہ جنات کہلایا، وہاں وہ نسمہ مفرد کہلا رہا ہے، مزید اس کو کمپاؤنڈ کیا تو وہ نسمہ مرکب بن گیا، انسان بن گیا. تو یہ جو متناہیت اور تناہیت کا لفظ جو تھا یہ واضح ہو گیا. چل شکر الحمدللہ. ویلکم. बस जी
ऐसा ही लग रहा है सर, रुकते हैं दांत वाली बात। कल कल के डिस्कशन में सर मैंने सुना था
जी,
दांत जो है मुंह की एनर्जी से काम लेती है।
जी जी
ठीक है, और मुंह जो है वो जिस्मा बनाती है। सर अभी जो आज की बात है इस महीने की, उसके अंदर है कि जिस तरह बिजली है के बल्ब लाभ हुए, उसी तरह जिस्मादार है।
बिल्कुल ठीक
सर, ये कौन सी बात है?
यही तो बात बताई। देखे ना, रूह एक है, आगे लाखों बल्ब हैं। ठीक है, मैं क्या इसमें इजाफा कर दूं, बल्ब भी हैं, पंखे भी हैं, हीटर भी हैं, वॉशिंग मशीन्स भी हैं, इस्त्रियां भी हैं, माइक्रोवेव ओवन्स भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, आपका मोबाइल भी है, चीजें तो लाशुमार हो गई। करंट एक ही है, सब में एक ही करंट, एक ही चार्ज है, कहीं वो एसी है कहीं डीसी है। पहले तो ये दो किस्में हो गई उसकी, हाँ या नहीं?
जी सर, करंट की ना ये दो किस्में,
जी एसी
अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट।
जी फिर इनके चार्जेस का फर्क है, कहीं वो 6 वोल्ट का है, कहीं 24 वोल्ट का है, कहीं 36 वोल्ट का है, कहीं 220 वोल्ट का है, कहीं 110 वोल्ट का है, कहीं 1100 वोल्ट का है, कहीं 440 वोल्ट का है। यानी कि फिर इसके अंदर ग्रेडेशंस हैं। बैन ही इसी तरह आपके जहन को अल्लाह ने एक ऐसी मशीन बना दिया जो इन करंट से काम लेती है और मुख्तलिफ दर्जों पे काम लेती है। वो चाहे आप 6 वोल्ट पे चलाएं, चाहे आप 11000 वोल्ट पे चलाएं, इंतहाएं हैं। अब्बा ने एक दफा मिसाल दी थी सलाहियतों की, मैंने सवाल पूछा सलाहियतों के इस्तेमाल का, तो अब्बा ने फरमाया भाई आपके घर में 3 फेज मीटर लगा हुआ है, आपके घर में 3 फेज मीटर लगा हुआ है। अब आप 15 वोल्ट का बल्ब जलाते हैं और उसी में गुजारा कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो घर में एसी लगाता है और एंजॉय करता है, बात आ गई इस्तेमाल करने पे। इस्तेमाल आपने करना है, एनर्जी तो अल्लाह ने वाफर मुहैया की हुई है, लाम इतना ही मकदारों में मुहैया की हुई है। जो कर रहा है वही जात है। ये जो सवाल पूछा किसने पूछा? मैं ये जो मैं है यही जात है, इसी को अना कहते हैं, इसी को नफ्स का है। मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, इसमें नफ्स से मुराद ये मैं ही तो है, जात ही तो है। अब ये जो मन व नहनो अकरबो अलैह मिन हबलिल वरीद, हम उसकी रगे जहाँ से करीब हैं, यहाँ हबलिल वरीद से मुराद भी जात है। ठीक हो गया? चल खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर।
जी
थैंक यू
सर, आपका शुक्रिया।
थैंक यू सर।
जी वेलकम, आपने आखिर हाजिरी लगवाई ली।